Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE. March 2019 examination in Hindi as a second language. Paper 2, listening comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
हेलो भाई साहब, कहीं बाहर गए थे क्या?
नहीं तो, हमारे यहाँ तो आजकल घर में थोड़ा काम चल रहा है.
पता नहीं, आपका फोन ही नहीं लग रहा था. मैंने पिछले हफ्ते भी कोशिश की थी.
अरे नहीं मीरा जी, मेरा फोन तो राकेश के साथ चला गया था. वह अपने फोन की जगह मेरा फोन ले गया. दोनों फोन एक ही जैसे हैं ना.
तब तो बड़ी दिक्कत हुई होगी आपको. कैसे काम चलाया?
कुछ नहीं, बस राकेश के ही फोन से काम चलाना पड़ा.
संवाद दो.
देवियों और सज्जनों, दुनिया के खूबसूरत आश्चर्य और विश्व की धरोहर ताजमहल में आपका स्वागत है. ताजमहल के निर्माण और इतिहास की पूरी जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूचना पटों पर लगी है. आप चाहें तो किसी प्रशिक्षित गाइड की सहायता भी ले सकते हैं. ताजमहल की दीवारों पर लिखना या कुछ भी उंकेरना मना है. कृपया लॉन से दूर रहें और ताज के परिसर में अपनी वेशभूषा की शालीनता बनाए रखें. धन्यवाद. संवाद तीन.
भाई साहब, टर्मिनल एक को कौन सा रास्ता जाता है?
टर्मिनल एक का मोड़ तो आप पीछे छोड़ आई हैं. यह तो एक तरफा रास्ता है. अब आप ऐसा कीजिए, इसी लेन पर सीधे चलती जाइए. लगभग 2 किलोमीटर के बाद एक लाल बत्ती आएगी, वहां से दाएं मुड़ जाइए.
वहां पूछना पड़ेगा या टर्मिनल एक के दिशा निर्देश लगे होंगे?
दिशा निर्देश तो लगे हैं, लेकिन दाएं मुड़िएगा, यू टर्न मत लीजिएगा, वरना आप लौटकर यहीं पहुंच जाएंगी.
जी, मैं ध्यान रखूंगी. धन्यवाद.
संवाद चार.
अमेरिका और इंग्लैंड भले ही विकसित देश हैं, लेकिन वहां के लोग भी भारतीयों की प्रतिभा के कायल हैं. इसका उदाहरण इस साल कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में देखने को मिला. विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक भारतीय छात्र ने ऐसा रोमांचक भाषण दिया कि तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी. चंडीगढ़ से वाणिज्य की पढ़ाई करने गए छात्र अंगद के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया में लोकप्रिय हुआ. बर्कले विश्वविद्यालय ने अंगद को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है.
संवाद पांच.
नमस्कार. सत्कार समूह की ओर से आपका स्वागत है. कहिए क्या सेवा करूं?
जी, हमने एक कमरा बुक किया था 2 दिनों के लिए।
किस नाम से बुक किया था, अपना नाम बताएंगे?
जी, मेरा नाम तो संजय साहू है, लेकिन कमरा शायद मेरी पत्नी प्रीति साहू के नाम से बुक है।
आप अपना परिचय कार्ड दिखाएंगे संजय जी?
जी, परिचय कार्ड तो नहीं है, हम तो सैर सपाटे के लिए आए हैं।
कोई बात नहीं, इस फॉर्म को भर दीजिए। धन्यवाद।
संवाद 6।
प्राचीन काल से भारत लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। महरौली का यह लौह स्तंभ उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इस लौह स्तंभ में लगे लोहे की मात्रा 98% है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुछ अन्य के अनुसार इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में करवाया था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण इससे भी पहले हो चुका था। यह पहले किसी हिंदू और जैन मंदिर का हिस्सा था।
अभ्यास 1 के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे। संवाद 1।
हेलो भाई साहब, कहीं बाहर गए थे क्या?
नहीं तो, हमारे यहां तो आजकल घर में थोड़ा काम चल रहा है।
पता नहीं, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। मैंने पिछले हफ्ते भी कोशिश की थी।
अरे नहीं मीरा जी, मेरा फोन तो राकेश के साथ चला गया था। वह अपने फोन की जगह मेरा फोन ले गया। दोनों फोन एक ही जैसे हैं ना?
तब तो बड़ी दिक्कत हुई होगी आपको। कैसे काम चलाया?
कुछ नहीं, बस राकेश के ही फोन से काम चलाना पड़ा।
संवाद 2।
देवियों और सज्जनों, दुनिया के खूबसूरत आश्चर्य और विश्व की धरोहर ताजमहल में आपका स्वागत है। ताजमहल के निर्माण और इतिहास की पूरी जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूचना पटों पर लगी है। आप चाहें तो किसी प्रशिक्षित गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। ताजमहल की दीवारों पर लिखना या कुछ भी उंकेरना मना है। कृपया लॉन से दूर रहें और ताज के परिसर में अपनी वेशभूषा की शालीनता बनाए रखें। धन्यवाद। संवाद 3।
भाई साहब, टर्मिनल 1 को कौन सा रास्ता जाता है?
टर्मिनल 1 का मोड़ तो आप पीछे छोड़ आई हैं। यह तो एक तरफा रास्ता है। अब आप ऐसा कीजिए, इसी लेन पर सीधे चलती जाइए। लगभग 2 किलोमीटर के बाद एक लाल बत्ती आएगी, वहां से दाएं मुड़ जाइए।
वहां पूछना पड़ेगा या टर्मिनल 1 के दिशा निर्देश लगे होंगे?
दिशा निर्देश तो लगे हैं, लेकिन दाएं मुड़िएगा, यू टर्न मत लीजिएगा, वरना आप लौटकर यहीं पहुंच जाएंगी।
जी, मैं ध्यान रखूंगी। धन्यवाद।
संवाद 4।
अमेरिका और इंग्लैंड भले ही विकसित देश हैं, लेकिन वहां के लोग भी भारतीयों की प्रतिभा के कायल हैं। इसका उदाहरण इस साल कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में देखने को मिला। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक भारतीय छात्र ने ऐसा रोमांचक भाषण दिया कि तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। चंडीगढ़ से वाणिज्य की पढ़ाई करने गए छात्र अंगद के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया में लोकप्रिय हुआ। बर्कले विश्वविद्यालय ने अंगद को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है।
संवाद 5।
नमस्कार, सत्कार समूह की ओर से आपका स्वागत है। कहिए, क्या सेवा करूं?
जी, हमने एक कमरा बुक किया था 2 दिनों के लिए।
किस नाम से बुक किया था, अपना नाम बताएंगे?
जी, मेरा नाम तो संजय साहू है, लेकिन कमरा शायद मेरी पत्नी प्रीति साहू के नाम से बुक है।
आप अपना परिचय कार्ड दिखाएंगे संजय जी?
जी, परिचय कार्ड तो नहीं है, हम तो सैर सपाटे के लिए आए हैं।
कोई बात नहीं, इस फॉर्म को भर दीजिए। धन्यवाद।
संवाद 6।
प्राचीन काल से भारत लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। महरौली का यह लौह स्तंभ उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इस लौह स्तंभ में लगे लोहे की मात्रा 98% है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुछ अन्य के अनुसार इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में करवाया था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण इससे भी पहले हो चुका था। यह पहले किसी हिंदू और जैन मंदिर का हिस्सा था।
यह अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभ्यास 2, प्रश्न 7। लोकप्रिय गायिका रेशमा का इंटरव्यू लेकर लौटे पत्रकार राकेश चोपड़ा के साथ इंद्रधनुष की प्रस्तुतकर्ता गोपिका की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
राकेश जी, हमारे श्रोताओं की ओर से आज की गपशप में आपका स्वागत है।
धन्यवाद गोपिका जी।
राकेश जी, लंबी जुदाई और लाल मेरी जैसी यादगार गानों की लोकप्रिय पाकिस्तानी गायिका रेशमा जी के बारे में सुना है कि वे बहुत संकोची स्वभाव की कलाकार थीं। यह बताइए, उनसे बातचीत का मौका आपको कब और कैसे मिला?
गोपिका जी, संकोची स्वभाव के बावजूद रेशमा जी अपनी सादगी, स्पष्ट और सीधी बातचीत के लिए जानी जाती थीं। उनसे बातचीत का अवसर लाहौर में मिला। हुआ ये कि मैं पाकिस्तान के दौरे पर गई भारत की क्रिकेट टीम के साथ लाहौर गया था। अगले मैच का कार्यक्रम बदल जाने के कारण मुझे लाहौर हवाई अड्डे पर जाना पड़ा। वहां अचानक मेरी नजर रेशमा जी पर पड़ी, जो कराची से लौट रही थीं। मौका ना गंवाते हुए मैंने उनसे इंटरव्यू की गुजारिश की और उन्होंने हाँ कर दी, तो बातचीत हो गई।
लेकिन आप तो क्रिकेट टीम के साथ गए थे, तो क्या आपने रेशमा जी से क्रिकेट पर भी कोई सवाल किया? क्या उन्हें क्रिकेट पसंद था?
जी हाँ, बातचीत की शुरुआत ही क्रिकेट से हुई थी। मैंने पूछा कि सचिन तेंदुलकर का खेल उन्हें कैसा लगता है। उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने पूछा, कौन सचिन तेंदुलकर? मैं तो बस इमरान खान को जानती हूं। अब मारिया शारोपोवा ऐसी बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन भारत में जन्मा कोई शख्स यदि ऐसा कहे तो अचरज होता है।
लेकिन यही शायद उनके सीधेपन और साफ गोई का सबूत था। जो मन में था सो लाग लपेट के बिना कह दिया। लेकिन आपने उन्हें भारत में जन्मा शख्स कहा, क्या उनका जन्म भारत में हुआ था?
जी हाँ, रेशमा जी का जन्म आज़ादी के साल राजस्थान के चूरू जिले के लोहा नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म बंजारे राजपूतों के परिवार में हुआ था। उनके पिताजी घोड़े और ऊँटों का व्यापार करते थे और तंबुओं में रहते थे, जिनमें रात भर लोकगीतों का दौर चलता था। लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार कराची चला गया था। वे स्कूल भी नहीं जा सकीं और अक्सर दरगाहों पर गाती थीं। एक बार पाकिस्तान टीवी और रेडियो के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी ने उन्हें शहबाज कलंदर की दरगाह पर लाल मेरी गाते हुए सुना। उन्होंने उसे रेडियो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद रेशमा जी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई।
रेशमा जी के गाने भारत में काफी लोकप्रिय हुए। उन्हें भारतीय फिल्मों में लाने का श्रेय किसे जाता है?
उनके गाने पर सबसे पहले राज कपूर जी की नजर पड़ी थी। अपनी फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने रेशमा जी का गाया अखियों को रहने दे गाना चुना था, लेकिन उन्होंने उसे लता जी से गवाया। उसके बाद सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो के लिए उनसे एक गाना गवाया था, लंबी जुदाई। इस गाने के लिए वे मुंबई आई थीं और दिलीप कुमार जी के घर रुकी थीं। यह गाना सुपरहिट हुआ और रेशमा जी के नाम को अमर कर गया।
आपने बताया कि सचिन तेंदुलकर के बारे में तो वे नहीं जानती थीं, लेकिन वैसे भारत के बारे में उनके क्या विचार थे?
रेशमा जी भारत को अपना दूसरा घर मानती थीं। वे भारत आईं तब चूरू में अपना घर देखने भी गईं। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रेशमा से ज्यादा ईमानदार इंसान ढूंढ पाना मुश्किल है। उनमें किसी तरह की लगावट नहीं थी।
राकेश जी, रेशमा जी के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। राकेश जी, हमारे श्रोताओं की ओर से आज की गपशप में आपका स्वागत है।
धन्यवाद गोपिका जी।
राकेश जी, लंबी जुदाई और लाल मेरी जैसी यादगार गानों की लोकप्रिय पाकिस्तानी गायिका रेशमा जी के बारे में सुना है कि वे बहुत संकोची स्वभाव की कलाकार थीं। यह बताइए, उनसे बातचीत का मौका आपको कब और कैसे मिला?
गोपिका जी, संकोची स्वभाव के बावजूद रेशमा जी अपनी सादगी, स्पष्ट और सीधी बातचीत के लिए जानी जाती थीं। उनसे बातचीत का अवसर लाहौर में मिला। हुआ ये कि मैं पाकिस्तान के दौरे पर गई भारत की क्रिकेट टीम के साथ लाहौर गया था। अगले मैच का कार्यक्रम बदल जाने के कारण मुझे लाहौर हवाई अड्डे पर जाना पड़ा। वहां अचानक मेरी नज़र रेशमा जी पर पड़ी, जो कराची से लौट रही थी। मौका ना गंवाते हुए मैंने उनसे इंटरव्यू की गुजारिश की और उन्होंने हाँ कर दी, तो बातचीत हो गई।
लेकिन आप तो क्रिकेट टीम के साथ गए थे, तो क्या आपने रेशमा जी से क्रिकेट पर भी कोई सवाल किया? क्या उन्हें क्रिकेट पसंद था?
जी हाँ, बातचीत की शुरुआत ही क्रिकेट से हुई थी। मैंने पूछा कि सचिन तेंदुलकर का खेल उन्हें कैसा लगता है। उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने पूछा, कौन सचिन तेंदुलकर? मैं तो बस इमरान खान को जानती हूं। अब मारिया शारोपोवा ऐसी बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन भारत में जन्मा कोई शख्स यदि ऐसा कहे तो अचरज होता है।
लेकिन यही शायद उनके सीधेपन और साफ गोई का सबूत था। जो मन में था सो लाग लपेट के बिना कह दिया। लेकिन आपने उन्हें भारत में जन्मा शख्स कहा, क्या उनका जन्म भारत में हुआ था?
जी हाँ, रेशमा जी का जन्म आज़ादी के साल राजस्थान के चूरू जिले के लोहा नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म बंजारे राजपूतों के परिवार में हुआ था। उनके पिताजी घोड़े और ऊँटों का व्यापार करते थे और तंबुओं में रहते थे, जिनमें रात भर लोकगीतों का दौर चलता था। लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार कराची चला गया था। वे स्कूल भी नहीं जा सकीं और अक्सर दरगाहों पर गाती थीं। एक बार पाकिस्तान टीवी और रेडियो के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी ने उन्हें शहबाज कलंदर की दरगाह पर लाल मेरी गाते हुए सुना। उन्होंने उसे रेडियो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद रेशमा जी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई।
रेशमा जी के गाने भारत में काफी लोकप्रिय हुए। उन्हें भारतीय फिल्मों में लाने का श्रेय किसे जाता है?
उनके गाने पर सबसे पहले राज कपूर जी की नजर पड़ी थी। अपनी फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने रेशमा जी का गाया अखियों को रहने दे गाना चुना था, लेकिन उन्होंने उसे लता जी से गवाया। उसके बाद सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो के लिए उनसे एक गाना गवाया था, लंबी जुदाई। इस गाने के लिए वे मुंबई आई थीं और दिलीप कुमार जी के घर रुकी थीं। यह गाना सुपरहिट हुआ और रेशमा जी के नाम को अमर कर गया।
आपने बताया कि सचिन तेंदुलकर के बारे में तो वे नहीं जानती थीं, लेकिन वैसे भारत के बारे में उनके क्या विचार थे?
रेशमा जी भारत को अपना दूसरा घर मानती थीं। वे भारत आईं तब चूरू में अपना घर देखने भी गईं। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रेशमा से ज्यादा ईमानदार इंसान ढूंढ पाना मुश्किल है। उनमें किसी तरह की लगावट नहीं थी।
राकेश जी, रेशमा जी के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8-15। सुप्रसिद्ध शायर कैफी आजमी के बारे में उनकी बेटी और प्रख्यात अभिनेत्री शबाना आजमी के संस्मरण को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह संस्मरण आपको 2 बार सुनाया जाएगा।
वे कभी दूसरों जैसे थे ही नहीं, लेकिन बचपन में ये बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। न तो वे ऑफिस जाते थे, न अंग्रेजी बोलते थे और न दूसरों के पापा की तरह पैंट और शर्ट पहनते थे, सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनते थे। वे डैडी या पापा की बजाय अब्बा थे। यह नाम भी सबसे अलग ही था। मैं स्कूल में अपने दोस्तों से उनके बारे में बात करते हुए कुछ कतराती थी, झूठ मूठ कह देती थी वे कोई कारोबार करते हैं, वरना सोचिए क्या यह कहती कि मेरे अब्बा शायर हैं। शायर होने का क्या मतलब, यही ना कि कुछ काम नहीं करते। बचपन में मुझे अपने माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए, जैसे कि जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला कराया जा रहा था वहाँ शर्त थी कि वही बच्चे दाखिला पा सकते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। क्योंकि मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मेरे दाखिले के लिए मशहूर शायर सरदार जाफरी की बीबी सुल्ताना जाफरी को मेरी माँ बनना पड़ा और अब्बा के एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना ने मेरे अब्बा की भूमिका की। अब्बा को छुपा कर रखना ज़्यादा दिन मुमकिन न रहा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखने शुरू कर दिए थे और एक दिन मेरी एक दोस्त ने क्लास में आकर बताया कि उसने मेरे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। बस उस पल के बाद बाजी पलट गई। जहाँ शर्मिंदगी थी वहाँ गौरव आ गया। 40 बच्चे थे क्लास में, मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना भी अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो उन्होंने मुझे लाकर कभी दी थी और समझाया था कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। मगर मुझे तो वैसी ही गुड़िया चाहिए थी जैसी मेरी सारी दोस्तों के पास थी, सुनहरे बालों और नीली आँखों वाली। मगर अब जबकि मुझे सबसे अलग अब्बा अच्छे लगने लगे, तो फिर उनकी दी हुई सबसे अलग गुड़िया भी अच्छी लगने लगी। और जब मैं अपनी काली गुड़िया लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें अपनी गुड़िया के गुण बताए, तो उनकी सुनहरे बालों और नीली आँखों वाली गुड़िया उनके दिल से उतर गई। यह सबसे पहला सबक था जो अब्बा ने मुझे सिखाया कि कामयाबी दूसरों की नकल करने में नहीं, आत्मविश्वास में है। हमारे घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मम्मी पृथ्वी थिएटर्स में काम करती थीं और अक्सर उन्हें दौरे पर जाना होता था, तो उन दिनों मेरे छोटे भाई बाबा और मेरी सारी जिम्मेदारी अब्बा पर आ जाती थी। उनकी थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी और उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे याद है महाराष्ट्र राज्य प्रतियोगिता के लिए वे एक नाटक पगली की तैयारी कर रही थीं और अपने रोल में इतनी खोई रहती थीं कि वे पगली के संवादों के अंदाज में बोलने लगती थीं, कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए। मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई हैं। मैं रोते हुए अब्बा के पास गई जो अपनी मेज़ पर बैठे कुछ लिख रहे थे। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुंदर के किनारे ले गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि मम्मी को कितने कम वक्त में कितने बड़े नाटक की तैयारी करनी पड़ रही है और हम सब का परिवार के हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि वो उनकी मदद करे, वरना वे इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएंगी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और जब मम्मी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला महाराष्ट्र सरकार से, तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड मम्मी ने नहीं मैंने जीता हो।
अभ्यास तीन का यह संस्मरण अब आप फिर से सुनेंगे।
वे कभी दूसरों जैसे थे ही नहीं, लेकिन बचपन में ये बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। न तो वे ऑफिस जाते थे, न अंग्रेजी बोलते थे, और न दूसरों के पापा की तरह पैंट और शर्ट पहनते थे, सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनते थे। वे डैडी या पापा की बजाय अब्बा थे। यह नाम भी सबसे अलग ही था। मैं स्कूल में अपने दोस्तों से उनके बारे में बात करते हुए कुछ कतराती थी, झूठ मूठ कह देती थी वे कोई कारोबार करते हैं, वरना सोचिए क्या यह कहती कि मेरे अब्बा शायर हैं। शायर होने का क्या मतलब, यही ना कि कुछ काम नहीं करते। बचपन में मुझे अपने माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए, जैसे कि जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला कराया जा रहा था वहाँ शर्त थी कि वही बच्चे दाखिला पा सकते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। क्योंकि मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मेरे दाखिले के लिए मशहूर शायर सरदार जाफरी की बीबी सुल्ताना जाफरी को मेरी माँ बनना पड़ा, और अब्बा के एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना ने मेरे अब्बा की भूमिका की। अब्बा को छुपा कर रखना ज़्यादा दिन मुमकिन न रहा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखने शुरू कर दिए थे, और एक दिन मेरी एक दोस्त ने क्लास में आकर बताया कि उसने मेरे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। बस उस पल के बाद बाजी पलट गई। जहाँ शर्मिंदगी थी वहाँ गौरव आ गया। 40 बच्चे थे क्लास में, मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना भी अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो उन्होंने मुझे लाकर कभी दी थी, और समझाया था कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। मगर मुझे तो वैसी ही गुड़िया चाहिए थी जैसी मेरी सारी दोस्तों के पास थी, सुनहरे बालों और नीली आँखों वाली। मगर अब जबकि मुझे सबसे अलग अब्बा अच्छे लगने लगे, तो फिर उनकी दी हुई सबसे अलग गुड़िया भी अच्छी लगने लगी, और जब मैं अपनी काली गुड़िया लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें अपनी गुड़िया के गुण बताए, तो उनकी सुनहरे बालों और नीली आँखों वाली गुड़िया उनके दिल से उतर गई। यह सबसे पहला सबक था जो अब्बा ने मुझे सिखाया कि कामयाबी दूसरों की नकल करने में नहीं, आत्मविश्वास में है। हमारे घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मम्मी पृथ्वी थिएटर्स में काम करती थी और अक्सर उन्हें दौरे पर जाना होता था, तो उन दिनों मेरे छोटे भाई बाबा और मेरी सारी जिम्मेदारी अब्बा पर आ जाती थी। उनकी थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी और उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे याद है महाराष्ट्र राज्य प्रतियोगिता के लिए वे एक नाटक पगली की तैयारी कर रही थीं, और अपने रोल में इतनी खोई रहती थीं कि वे पगली के संवादों के अंदाज में बोलने लगती थीं, कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए। मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई हैं। मैं रोते हुए अब्बा के पास गई, जो अपनी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुंदर के किनारे ले गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि मम्मी को कितने कम वक्त में कितने बड़े नाटक की तैयारी करनी पड़ रही है, और हम सब का, परिवार के हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि वो उनकी मदद करे, वरना वे इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएंगी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली, और जब मम्मी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला महाराष्ट्र सरकार से, तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड मम्मी ने नहीं मैंने जीता हो।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 16-23।
इंदौर की पूर्व महापौर सुमित्रा जोशी के साथ पत्रकार विनय राय की बातचीत को ध्यान से सुनिए, और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी। सुमित्रा जी, स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद विनय जी।
सुमित्रा जी, आपके शहर इंदौर ने आपके नेतृत्व में देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता था। यह बताइए कि चंडीगढ़, गांधीनगर और नई दिल्ली जैसे खुले आधुनिक शहरों को पीछे छोड़कर इस खिताब को जीतने के लिए इंदौर ने क्या तरकीब अपनाई?
विनय जी, 25 लाख की आबादी वाले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने शहर को देश के सबसे साफ सुथरे शहर में बदलना आसान काम तो नहीं था, लेकिन मैं कहूँगी कि लोगों की लगन और संगीत के जादू ने इस काम को सुगम बनाया।
मैं कुछ समझा नहीं, संगीत का जादू सफाई के काम कैसे आया सुमित्रा जी?
यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है विनय जी। शहर के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जगहों पर जमा करने के लिए हमने शहर में 350 से अधिक छोटी गाड़ियां चलाईं, जो गली मोहल्लों में लगातार चक्कर लगाती रहती थीं। लेकिन लोगों को इन गाड़ियों के आने की सूचना देना और इनकी तरफ आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमने आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ियों की तर्ज पर कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर भी गाने बजवाने का फैसला किया। इन गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकरों पर कैलाश खेर का गाना स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, और शान का गाना इंदौर को स्वच्छ बनाना है अब हमने ये ठाना है बजाया जाने लगा। ये दोनों गाने शहर को साफ सुथरा रखने वाले कचरा वाहनों के प्रतीक बनकर लोगों की जबान पर चढ़ गए। लोग इन गानों की आवाज सुनते ही अपने घरों और दुकानों में जमा कचरे को लेकर दौड़ पड़ते हैं और गाड़ियों में डाल देते हैं।
लेकिन भारत के शहरों में लोगों की अक्सर यह शिकायत होती है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां या तो पर्याप्त संख्या में होती नहीं, या फिर वे कूड़ा उठाती नहीं है।
इसी शिकायत का मौका न देने के लिए हमने इंदौर में पर्याप्त संख्या में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां चलाईं, जो सुबह से लेकर रात तक चलती रहती हैं और कूड़ा जमा करने के लिए बड़े कूड़ेदानों को हटाकर जगह जगह पर हजारों छोटे छोटे कूड़ेदान लगा दिए, जिन्हें दिन में कई बार खाली किया जाता है। इससे कूड़ा सड़कों और गलियों में नहीं फैलता। इस कूड़े को अलग अलग जगहों पर जमा किया जाता है, जहां से बड़ी गाड़ियां उसे सीधे कचरागाहों तक ले जाती हैं।
क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी की थी आपने, जिससे कि कचरा पैदा ही कम हो?
जी हाँ, हमने रसोई और बगीचे से निकलने वाले गीले कचरे को दोबारा उपयोग में लाने की व्यवस्था की थी। इसके लिए लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए काले और हरे रंग के थैले और कूड़ेदान दिए गए। सूखा कचरा काले थैले या कूड़ेदान में डाला जाता है, जबकि रसोई और बगीचे से निकलने वाला गीला कचरा हरे थैले या कूड़ेदान में। गीले कचरे को सीधा खाद बनाने के लिए भेज दिया जाता है। बाकी सूखे कचरे को कचरागाहों में फेंक दिया जाता है। गीला कचरा दोबारा उपयोग में लाने से कचरे की कुल मात्रा घट गई।
प्लास्टिक के कचरे की समस्या को कैसे सुलझाया आपने?
प्लास्टिक का कचरा गंदगी फैलाने के साथ साथ शहर के नाले नालियों को भी बंद कर देता है। इसकी वजह से नाले नालियों में गंदा पानी भरा रहता है, जिसमें मच्छर और मक्खियां पनपते हैं। इसे रोकने के लिए हमने प्लास्टिक के थैलों और पैकिंग के सामान की बिक्री पर रोक लगाई। कचरे से प्लास्टिक बीन कर उसके दोबारा उपयोग की व्यवस्था भी की गई। शुरू में तो इस काम में दिक्कत आई, लेकिन जागरूकता आने के साथ साथ लोगों का सहयोग मिलने लगा और काम आसान होता गया।
खुले में मलमूत्र त्याग को रोकने के लिए क्या किया आपने?
इंदौर के गरीब और झोपड़पट्टी वाले इलाकों में खुले में मलमूत्र की समस्या गंभीर थी। इसके लिए हमने 12,500 से अधिक घरों में शौचालय बनवाए, 175 सार्वजनिक शौचालयों की हालत दुरुस्त की और लगभग 20 चलित शौचालय भी बनवाए। इन सभी उपायों के अलावा खुली जगहों को छोटे छोटे पार्कों और उद्यानों में बदलने का अभियान भी शुरू किया गया। निजी संस्थाओं और स्कूलों को पार्कों और उद्यानों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अपने अपने इलाके की सफाई और सुंदरता को लेकर लोगों में होड़ लगने लगी। इसी तरह की स्वस्थ स्पर्धाओं से इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना है, जिस पर अब इंदौर वासियों को गर्व है।
सुमित्रा जोशी जी, इंदौर के सबसे साफ सुथरा शहर बनने की रोचक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद विनय जी।
अभ्यास 4 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। सुमित्रा जी, स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद विनय जी।
सुमित्रा जी, आपके शहर इंदौर ने आपके नेतृत्व में देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता था। यह बताइए कि चंडीगढ़, गांधीनगर और नई दिल्ली जैसे खुले आधुनिक शहरों को पीछे छोड़कर इस खिताब को जीतने के लिए इंदौर ने क्या तरकीब अपनाई?
विनय जी, 25 लाख की आबादी वाले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने शहर को देश के सबसे साफ सुथरे शहर में बदलना आसान काम तो नहीं था, लेकिन मैं कहूंगी कि लोगों की लगन और संगीत के जादू ने इस काम को सुगम बनाया।
मैं कुछ समझा नहीं, संगीत का जादू सफाई के काम कैसे आया सुमित्रा जी?
यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है विनय जी। शहर के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जगहों पर जमा करने के लिए हमने शहर में 350 से अधिक छोटी गाड़ियां चलाईं, जो गली मोहल्लों में लगातार चक्कर लगाती रहती थीं। लेकिन लोगों को इन गाड़ियों के आने की सूचना देना और इनकी तरफ आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमने आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ियों की तर्ज पर कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर भी गाने बजवाने का फैसला किया। इन गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकरों पर कैलाश खेर का गाना स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने और शान का गाना इंदौर को स्वच्छ बनाना है अब हमने ये ठाना है बजाया जाने लगा। ये दोनों गाने शहर को साफ सुथरा रखने वाले कचरा वाहनों के प्रतीक बनकर लोगों की जबान पर चढ़ गए। लोग इन गानों की आवाज़ सुनते ही अपने घरों और दुकानों में जमा कचरे को लेकर दौड़ पड़ते हैं और गाड़ियों में डाल देते हैं।
लेकिन भारत के शहरों में लोगों की अक्सर यह शिकायत होती है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां या तो पर्याप्त संख्या में होती नहीं या फिर वे कूड़ा उठाती नहीं हैं।
इसी शिकायत का मौका न देने के लिए हमने इंदौर में पर्याप्त संख्या में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां चलाईं, जो सुबह से लेकर रात तक चलती रहती हैं और कूड़ा जमा करने के लिए बड़े कूड़ेदानों को हटाकर जगह जगह पर हजारों छोटे छोटे कूड़ेदान लगा दिए, जिन्हें दिन में कई बार खाली किया जाता है। इससे कूड़ा सड़कों और गलियों में नहीं फैलता। इस कूड़े को अलग अलग जगहों पर जमा किया जाता है, जहां से बड़ी गाड़ियां उसे सीधे कचरागाहों तक ले जाती हैं।
क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी की थी आपने जिससे कि कचरा पैदा ही कम हो?
जी हाँ, हमने रसोई और बगीचे से निकलने वाले गीले कचरे को दोबारा उपयोग में लाने की व्यवस्था की थी। इसके लिए लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए काले और हरे रंग के थैले और कूड़ेदान दिए गए। सूखा कचरा काले थैले या कूड़ेदान में डाला जाता है, जबकि रसोई और बगीचे से निकलने वाला गीला कचरा हरे थैले या कूड़ेदान में। गीले कचरे को सीधा खाद बनाने के लिए भेज दिया जाता है। बाकी सूखे कचरे को कचरा गाहों में फेंक दिया जाता है। गीला कचरा दोबारा उपयोग में लाने से कचरे की कुल मात्रा घट गई।
प्लास्टिक के कचरे की समस्या को कैसे सुलझाया आपने?
प्लास्टिक का कचरा गंदगी फैलाने के साथ साथ शहर के नाले नालियों को भी बंद कर देता है। इसकी वजह से नाले नालियों में गंदा पानी भरा रहता है, जिसमें मच्छर और मक्खियां पनपते हैं। इसे रोकने के लिए हमने प्लास्टिक के थैलों और पैकिंग के सामान की बिक्री पर रोक लगाई। कचरे से प्लास्टिक बीन कर उसके दोबारा उपयोग की व्यवस्था भी की गई। शुरू में तो इस काम में दिक्कत आई, लेकिन जागरूकता आने के साथ साथ लोगों का सहयोग मिलने लगा और काम आसान होता गया।
खुले में मलमूत्र त्याग को रोकने के लिए क्या किया आपने?
इंदौर के गरीब और झोपड़पट्टी वाले इलाकों में खुले में मलमूत्र की समस्या गंभीर थी। इसके लिए हमने 12,500 से अधिक घरों में शौचालय बनवाए, 175 सार्वजनिक शौचालयों की हालत दुरुस्त की और लगभग 20 चलित शौचालय भी बनवाए। इन सभी उपायों के अलावा खुली जगहों को छोटे छोटे पार्कों और उद्यानों में बदलने का अभियान भी शुरू किया गया। निजी संस्थाओं और स्कूलों को पार्कों और उद्यानों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अपने अपने इलाके की सफाई और सुंदरता को लेकर लोगों में होड़ लगने लगी। इसी तरह की स्वस्थ स्पर्धाओं से इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना है, जिस पर अब इंदौर वासियों को गर्व है।
सुमित्रा जोशी जी, इंदौर के सबसे साफ सुथरा शहर बनने की रोचक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद विनय जी।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.